उन्होंने बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के नेहरू को, और उन्होंने कहा जी कि उनकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर आज भी कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो जिंदा है, हालांकि उसको खराब काफी किया गया है। बीजेपी जो है उन्होंने कहा जी कि 2/3 मेजोरिटी मांगती है और कहती है हमें 400 सीटें दो, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं और डेमोक्रेसी की स्पिरिट को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हाँ, इससे पहले भी हमारा संविधान मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत दफा चेंज हुआ है, लेकिन उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति जो थी वो शामिल थी। इसके साथ साथ जो श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं सुखबीर बादल, वो भी आज बहुत ज्यादा भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा जी कि मोदी जी जिस वक्त पंजाब के अंदर आए हैं तो उन्होंने बड़े लंबे लंबे वादे किए। उन्होंने कहा जी ये करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में हमारी वजह से बना है, और अगर इंडिपेंडेंस के वक्त बीजेपी होती तो हम कभी करतारपुर को पाकिस्तान के अंदर ना ले जाने देते, शायद ये सच हो सकता है, लेकिन आपके अंडर जो आप बीजेपी वाले सेंटर में बैठे हैं उसके अंडर हमारे जो मोस्ट सेक्रेट श्राइन्स हैं, सिख्स का तख्त हरी श्री हजार साहेब और श्री पटना साहेब, वो आपने आरएसएस के कंट्रोल में दे दिया है। इसके अलावा दिल्ली का सिख्स गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो भी आरएसएस ने उस पर कब्जा कर लिया है। एसजीपीसी जो थी वो उसका जो एक सेपरेट गुरुद्वारा कमेटी आपने बनाने की कोशिश की है, उसको आपने तोड़ने की कोशिश की है हरियाणा में। ऐसा काम तो अंग्रेज सरकार ने भी कभी नहीं किया जो आपने सेंटर में बैठ के किया है मोदी जी, ये सुखबीर बादल साहब ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मोदी जी कह रहे हैं कि जो शिरोमणी अकाली दल है उसमें बहुत सारे मुश्किलें हैं, तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं आप जरा अपनी पार्टी के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लो, हमें छोड़ो। सैट के जो एक और भी लीडर थे संजीव सिंह बड़ायना, उन्होंने कहा जी कि बीजेपी सिर्फ हार्डली 200 सीटें इस दफा जीत सकेगी। इसके अलावा कांग्रेस के कैंडिडेट मनीष तिवारी ने भी कहा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है ये एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। उसका जो मैनिफेस्टो है वो रीपैकेज किया गया है, बट इट इज फुल ऑफ अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस। तो बड़ी चीजें भड़क गई हैं हिंदुस्तान में भी, हैं जी। तो बस ये है ये, लेकिन भड़की मोदी जी ने जो कल बड़ी खराब किस्म की परसों रात जो जुबान इस्तेमाल की है ना, उसकी वजह से कल भी और आज भी बहुत सारे लीडर्स हिंदुस्तान में भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा ये आपका लैंग्वेज कुछ ठीक नहीं है मोदी जी, ऐसा ना बोलो। तो इसीलिए कल ओवैसी जी ने कहा, उसने कहा हाँ आप तो हमें कह रहे हो मुजरा करने वाले, और आप चाइना के साथ डिस्को कर रहे थे और जब लोग मर रहे थे तो आप भंगड़ा कर रहे थे, तो काफी खींचा फिर लोगों ने। और आज भी
इलेक्शन
इलेक्शंस ऑफ कोर्स
इलेक्शन में ये एक कनाडा में भी होता है। ये जैसे कल ट्रम्प साहब ने कहा कि क्रूकेड बाइडेन,
हाँ वो तो क्रूकेड हिलरी भी कहते थे।
एग्जैक्टली
लेकिन इस तरह की लैंग्वेज ये यूज करते हैं, इससे पहले कभी लीडर्स ने ऐसे की नहीं थी।
दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड क्रूकेड बाइडेन, क्रूकेड हिलरी,
क्योंकि हिलरी हट गई है ना रास्ते से। उस वक्त हिलरी थी ना तो क्रूकेड हिलरी थी, अभी वो हट गई है, अभी बाइडेन साहब रास्ते में है तो वो क्रूकेड बाइडेन है।
उन्होंने कहा कि ही इज द वर्स्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड ही डिस्ट्रॉयड अमेरिका।
यस, तो कहते तो सही है वैसे, और पहले उनको कहते थे स्लीपी जो।
तो अब ये देख लें कि ये मेरा कहने का मकसद ये है कि ये हर जगह पे दुनिया में जहां भी,
लेकिन अमेरिका में अब शुरू हुआ है, ये पहले ऐसे नहीं था।
पॉलिटिशियंस जो भी है दुनिया भर में जब इलेक्शन का जमाना आता है तो दे ऑल गिव यू डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। अब यहां देख लेना ओंटेरियो में, ओंटेरियो के जैसे ही बॉनी क्रॉम्बी जो है वो लीडर बनी, अभी उनके पास सीट भी नहीं है, वो कंजर्वेटिव ने फॉरन लेके आ गए साहब, ये तो फ्रेंड ऑफ ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो, हाँ। वो तो टैक्स बढ़ाने में माहिर,
लेकिन मजद भाई इस तरह की गंदी लैंग्वेज नहीं यूज की ना, ये तो क्रिटिसिज्म इज डिफरेंट, गंदी लैंग्वेज इज डिफरेंट,
इज नॉट अ गंदी लैंग्वेज।
वो वही मैं कह रही हूँ कि ये अभी यूज कर रहे हैं, अभी यूज कर रहे हैं, इससे पहले अमेरिकन पॉलिटिक्स
थोड़े दिनों में देखे हैं। अभी जो इंग्लैंड में जो है वो जब शुरू होगी ना कैनरा सिंह, तो उसके बाद देखिएगा वहां पर क्या 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 शायरी।
हमारे पोप साहब ने भी बड़ी खराब लैंग्वेज यूज कर ली है, तो और तो आप छोड़ ही लें, उसके ऊपर बड़ी दुनिया पड़ गई है उनके पीछे, तो उन्होंने आज
अपोलोजाइज किया,
क्योंकि वो कहते हैं ना उनके आसपास जो लोग थे उन्होंने कहा जी वो स्पेनिश बोलते हैं, उनको इटालियन जो है ये वर्ड ज्यादा पता नहीं है,
तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था ना। मतलब ये कि मुझे भी आप कह दें चाइनीज में एंड आई स्टार्ट सेइंग इट बट द थिंग इज दैट आई डोंट नो द नेम, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट, इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम.
तो ऐसे ही हम पाकिस्तान का इतना मजाक बना रहे हैं कि वो लड़की ने जो है वो हिलवा उसका लिखा हुआ था उसको पकड़ के लोगों ने किस्सा बनाया, तो हमने ऐसे ही बेचारे लोगों को इतना बदनाम पाकिस्तान में किया है. लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो फिर कहीं पर भी हो सकता है ना माजिद भाई.
मगर ना मगर वो रिलीजियस टाइप हो गया था वो, दैट वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग. उन्होंने डजंट मैटर व्हाट आप ये हाँ. देखे ना वो तो, जैसे मैं ये कहता हूँ कि वो जो जोक सुनाते हैं ना हम
हाँ.
एक शख्स
बाथरूम में बैठा वो बेचारा जो है वो सऊदी का तराना पढ़ रहा था, तो पता है उसको पकड़ के मारा पीटा के तू कुरान पढ़ के पढ़ रहा है. तो उसने कहा नहीं ये तो सऊदी का तराना पढ़ रहा था.
नहीं, हाँ तो ये कहने का मेरा मकसद है कि ये अगर आपको किसी चीज का पता नहीं है हाँ. तो पहले पता कर लो, इससे पहले कि तुम बात करो. मगर ये सारी चीजें जो जैसे पाकिस्तान में हुआ होगा, एक खातून जो है उन्होंने कुछ पहना हुआ है, आपके पास भी वैसी चीज है.
नहीं लेकिन वो उर्दू में लिखा हुआ है, थैंकफुली वो उर्दू में लिखा है, तो शायद हमारी जहल कौम पढ़ सकती है, उर्दू तो पढ़ सकती है ना. मिर्जा गालिब का और नीचे लिखा हुआ है गालिब, तो गालिब का वो पोइट्री लिखा हुआ.
मगर ये कि आप अगर उनको टाइम देंगी तो पढ़ने की पढ़ने देंगे ना, वो तो पहले ही आपका काम तमाम कर देंगे. उनको उर्दू भी पढ़नी नहीं आती है, ये जाहिल लोग हैं, इनको ना उर्दू पढ़नी आती है, ना इंग्लिश पढ़नी आती है, ना अरबी पढ़नी आती है. उनको तो सिर्फ लफ्ज नजर आए वहां पर, उर्दू और अरबिक के जो अल्फाबेट्स
हैं, फॉन्ट है वो तो एक ही है, फॉन्ट एक है.
तो वो उस पर भी वो उनको पता ही नहीं. आज आपने बताया लोगों को कि उसका क्या मतलब
है. हिलवा मीन्स ब्यूटिफुल, और हिलवा को स्वीट में भी यूज करते हैं ब्यूटिफुल भी, क्योंकि कहते हैं हाई वलद हिलू, यानी कि ये जो बच्चा है बड़ा खूबसूरत है.
हाँ.
तो और अना आकल हिलवा, यानी कि मैं खा रहा हूँ स्वीट्स.
हाँ.
यू नो, तो क्योंकि अरबिक इज अ वेरी रिच लैंग्वेज, तो आप उसको यूज कैसे वर्ड को कर रहे हैं वो. जैसे क्या वर्ड लायन है, लायन के लिए कोई तकरीबन 70 डिफरेंट वेज में उसको यूज किया जा सकता है, डिपेंड करेगा कि किस सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हैं. सो अरबिक इज अ रिच लैंग्वेज, उसमें एक वर्ड के कई कई मीनिंग है, डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कैसे में यूज कर रहे हो आप.
एग्जैक्टली.
तो इसलिए
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मगर जहालत की कोई
हद नहीं है,
हद नहीं है, जहालत की कोई स्टडीज नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जहालत. तो इस्लाम में भी जहालत का जमाना कहते हैं.
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल.
जमाना जो है हाँ. वो जहालत का जमाना जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आया था उसको जहालत का जमानत कहते थे. अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जहालत को खत्म किया.
माजिद भाई कुरान का पहला लफ्ज है इकरा, जो आया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, है ना. इकरा, इकरा का क्या मतलब है? पढ़ो
पढ़ो,
है ना. तो तालीम सबसे पहली चीज जो गॉड ने भी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर रिवील की, वो कहा पढ़ाई करो, पढ़ो. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम उनका क्या कहना है? अगर तालीम के लिए चीन जाना पड़े, आप सोचो जरा, 1500 साल पहले चीन किधर तो अरेबिया किधर, और जाना कोई आसान था? तो जाना पड़े तो भी जाओ तालीम के लिए, यू नो. तो जहालत से तो हमेशा जो है मना किया गया ना.
मगर ये जितना भी काम होता है, जितने टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट है जाहिल, उनको नॉलेज नहीं है.
नहीं, जीरो जीरो उनको मजहब का पता है, जीरो मजहब का पता ही नहीं है.
मजहब उनको तो पता,
लेना देना ही नहीं है मजहब क्या है,
उनको पता ही नहीं मजहब क्या है.
मजहब तो इजाजत नहीं देता हथियार उठाने की, लड़ाई मार कुटाई किसी को मारने पीटने की तो इजाजत ही नहीं देता.
खत्म बात हो गई. और वो भी वो आपने अभी तक तो डिसाइड भी नहीं किया है कि क्या किस शख्स ने क्या काम किया है, और उसके बावजूद आप जाके उसको हर्ट करें.
हर्ट करें,
इट इज
वही है ना. मजहब भाई मैं आपको पता है फोर्ब्स मैगजीन में जब काम करती थी तो वहां पे यही लोग कहते थे ना मुझे, जो थे वहां पे वो यही कहते, वो कहते थे तुम लोग जो है ना मुल्ला उमर का इस्लाम फॉलो करते हो, तुम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तुम इस्लाम फॉलो नहीं करते हो मुसलमान.
एग्जैक्टली.
क्योंकि हमारा हमने देखे ना लोग कहते हैं अच्छा जी अब ये बात कैसे होगी? ओ भाई छोड़ो कैसे होगी, हमें कौन सा मुफ्ती बताएगा? छोड़ो मुफ्ती को, रसूल को देखो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, बस उनको देख लो, उनको देख लो.
एग्जैक्टली.
भाई ओ जी मीनू इससे बड़ा गुस्सा आ गया, मेरा दिल कीता है थप्पड़ इसके मुंह से मारा. आपको रसूल से ज्यादा तकलीफ हुई जब उनके चचा का नाक कान जबान काट के हिंदा ने हार पहन लिया, उससे ज्यादा तकलीफ हुई आपको? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हजरत उमर तो तलवार लेके खड़े थे ना कि अभी मैं इसकी गर्दन उड़ाता हूं. तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? उन्होंने कहा नहीं छोड़ दें आप, ये औरत है, इसको ऐसे नहीं करना आपने. तो टॉलरेंस है ना, वो मैं मारा तेरे मुंह ते चपेट थप्पड़ मारा है, मैं तेन गोली मार दिया गए, तो कहां आएगी टॉलरेंस, कहां आएगी टॉलरेंस?
ये जहालत है.
रसूल को देखो, रसूल को देखो, उन्होंने मौकों पे क्या कहा, उन्होंने
पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा शख्स जो है, चाहे आदमी की नहीं औरत हो आदमी हो, पढ़ा लिखा शख्स जो है वो ऐसी जबान यूज ही नहीं करेगा।
जी,
फॉरगेट अबाउट डूइंग, ही वुडंट इवन थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स।
जी जी, और ये भी मैंने सुना है मजहब भाई, आप इसको एंडोर्स कर सकते हैं शायद अगर आपको ज्यादा, क्योंकि मेरे से पता है मजहब के बारे में। आपको पता है कि जब सुलह हुदैबिया हुआ था वो ज्यूज के साथ किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसमें क्योंकि ज्यूज को सब मारते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुस्लिम स्टेट आपको प्रोटेक्शन देगी लेकिन आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैंने सुना है कुछ हिस्टोरियंस जो है वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो ज्यूज थे उनको, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे तो उनको कुछ के लिए कुछ उस्ताद लगाया था मुसलमान बच्चों को पढ़ने के लिए, ऐसा था? ऐसी आपने एक बात सुनी है कोई?
नहीं।
अच्छा,
ऐसी कोई बात नहीं,
ऐसा बात नहीं सुनी। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ पढ़े लिखे जो उनके लोग थे उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लम ने उनको शायद कहा था कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ, ऐसा
हो सकता है। हो सकता है
जी, जी
हो सकता है, ये इंसानियत का वो है।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
हो सकता है।
तो उन्होंने कहा था कि तालीम हासिल होनी चाहिए बच्चों को,
तालीम हर चीज में, तालीम हर चीज में, तालीम। अगर
बिल्कुल
यहूदी आज इतने ऊपर है तो उनकी सिर्फ
तालीम, एजुकेशन, ओनली एजुकेशन। उनकी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उनकी एक पूरी पीढ़ी थी ना मजद भाई, दिन रात उन्होंने काम करके अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया, सिर्फ पढ़ाया, बस
पढ़ाने की वजह से ये हुआ। वेस्ट जो है आज अगर
यहाँ पे खड़ा है,
खड़ा है
वो तालीम,
तालीम की वजह से है।
कोई शॉर्ट,
हम जो है वो इतनी दुनिया में नीचे हैं वो उसकी वजह तालीम,
तालीम है। हाँ जी,
तालीम ही नहीं है,
तालीम ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल।
और हमारा ब्रेन जो है वो वॉश आउट कर दिया गया है,
बिल्कुल, बिल्कुल।
अभी तक हमें बताया गया है कि इतनी लंबी दाढ़ी रखनी है आपने, यहाँ से पजामा जो है इतना ऊंचा पहनना है,
गिट्टे से ऊंचा होना चाहिए।
हाँ जी, और वो, और ये सारी चीजें जो है ये सेकेंडरी चीजें हैं।
वो आपको पता है एक फिल्म आई थी पाकिस्तानी, उसमें वो थे नसीरुद्दीन शाह साहब, उसमें उन्होंने काम किया था। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये देखो जी, ये लड़का जवान सा है, ये दाढ़ी नहीं रखता तो ये तो सुन्नत रसूल है। तो उन्होंने कहा कि दाढ़ी में रसूल नहीं है, रसूल में दाढ़ी जो है वो नहीं है, सुन्नत जब आप फॉलो उनकी बहुत ज्यादा करने लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनका एक गुलाम बन सकूं तो फिर आप दाढ़ी रखते हैं।
हाँ।
तो इसलिए जो ये है कि ये दाढ़ी में इस्लाम नहीं है बिल्कुल।
हाँ,
या इस्लाम में जो है वो दाढ़ी नहीं है, ये आपकी अकीदत और मोहब्बत का लेवल है अपने रसूल के साथ कि आप बिल्कुल कहते हैं कि मैं उनकी जूतियों की खाक की तरह अगर मैं बन जाऊं तो मैं दाढ़ी रख लूं एक, है ना?
Exactly.
तो मैं तो इसलिए तो वो बड़ा प्यारा उनकी वो पूरी वो जो उन्होंने वो फिर पूरी वो तमहीद बांधी थी नसीरुद्दीन शाह ने, बड़े रेफरेंसेस इस्लाम के दे के कि इस जो हमारे जो थे जो स्कॉलर थे इस्लामिक, उन्होंने ये बात कही है, यही कही है, ये कही है, तो उसमें वो सारा कुछ उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपकी मोहब्बत सिर्फ शो करती है, वरना ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई दाढ़ी रख रहा है कि नहीं रख रहा, उस पर आप किसी को कह नहीं सकते कि जो दाढ़ी नहीं रख रहा वो ज्यादा नेक नहीं है,
तो
जो दाढ़ी वाला है वो ज्यादा नेक है।
हाँ,
ये नहीं आप दाढ़ी
का नेकी,
दाढ़ी का नेकी से वही उन्होंने कहा जी दाढ़ी का इस्लाम में दाढ़ी नहीं है।
देखिए जी, अब बाज लोग जो ना जो वो है, मैं आपको बताऊं जहालत का, जहालत में ये है सलवार कमीज इस्लामिक ड्रेस है, और इस्लामिक ड्रेस कहां से हो गया? ये
अरब्स का तो सलवार कमीज ड्रेस ही नहीं था।
अब वो
तो अभी भी कंदूरा पहनते हैं लंबा सा,
कंदूरा जो है वो भी इस्लामिक ड्रेस
नहीं, नहीं
इस इस्लामिक ड्रेस का कोई इसी से ताल्लुक ही नहीं
है।
ताल्लुक है ही नहीं कि भाई आपने आपको अपना जिस्म छुपाना है।
सिर्फ
किस तरीके से छुपाते हैं? अब आप जाएंगे वहां पर बांग्लादेश वगैरह में तो वो
साड़ीज पहनते हैं और लुंगियां पहनते हैं,
लुंगियां पहनते हैं।
हाँ।
सही है। तो अब वो ये कहे कि भाई ये लुंगी जो है ये आपका
इस्लाम में नहीं है,
नहीं है। ये सारी जहालत की बातें हैं।
हाँ। मुझे याद आ गया मजबूरी, जिस वक्त मैं इस्लामाबाद में थी ना तो वहां पे मेरी मुलाकात हुई, वहां पे बोस्नियन एम्बेसडर जो है वो खातून थी, लेडी थी, वो बन के आई थी वहां पे, तो बोस्निया की एम्बेसडर। तो उनके जो वालिद साहब थे, बोस्निया के जो ग्रैंड इमाम थे उसकी सबसे बड़ी मस्जिद के, बोस्निया हर्ज़ेगोविना के, तो वो जिस वक्त आई तो उन्होंने तो जी बड़ा जबरदस्त वेस्टर्न ड्रेस, लेकिन ऐसा सर पे वो टाटा नहीं, लेकिन वैसे अदरवाइज पूरे कपड़े उन्होंने ऐसे करके पहने होते थे और खुला सा पजामे की तरह का वो ट्राउजर्स और फिर शर्ट और शर्ट के ऊपर एक कोट लंबा सारा ऐसे पहना था। तो हमने जब पहली बार उनसे हम मुलाकात, हम सारे पाकिस्तानी गए मिलने के लिए उनसे, तो हमने उनसे कहा कि आप लोग तो मुसलमान हो और आप उधर बड़ा जुल्म की बातें कर रहे हो और कह रहे हो हम अपना मुस्लिम कल्चर और आइडेंटिटी रखना चाहते हैं, तो आपका जो ये ड्रेस है ये तो शायद मुसलमानों वाला नहीं है। तो वो हंसना शुरू हो गई। उसने कहा इस्लाम का क्या ड्रेस आपको बताया गया है? हम यूरोप में रहते हैं, हमने तो वही जो आपका जुमला मैं रिपीट कर रही हूं जो आपने अभी कहा है मुझे, उसने भी एग्जैक्टली वही कहा, उसने कहा इस्लाम में सतर छुपाने का जिक्र है, तो सतर छुपाना है आपने। वो कहते हैं जी हम बोस्निया के अंदर शलवार कमीज नहीं पहनते हैं, हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, अपना सतर छुपा के करते हैं, बस वो सतर छुपाया आपने खुले पजामे में या शलवार में, दैट्स इररिलेवेंट, दैट्स इररिलेवेंट एब्सोल्युटली। हाँ
आप एक मुल्क का कुछ और ड्रेस है, दूसरे मुल्क का कोई और ड्रेस होगा, वो मुल्कों से इस्लाम नहीं बनता,
नहीं बनता। हाँ जी हाँ जी, वो इस्लाम का एक बेसिक उन्होंने प्रिंसिपल दे दिया, वही आप वाली बात के सतर छुपाएं। अब वो सतर आपने कंदूरे से छुपाना है, शलवार कमीज से छुपाना है, खुला सा पजामा और शर्ट पहन के छुपाना है, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है ना। तो ऐसे तो हमें बड़ी हरकत, वो कहती है कि हमारे वहां पे बोस्निया में सब लोग जिसको आप अभी कह रहे हो वेस्टर्न ड्रेस, हम ये वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते हैं, और जिसने ऊपर हिजाब पहननी है वो फिर और ज्यादा अगर करना चाहता है वो हिजाब पहनता है, वरना हम खुला ढीला ड्रेस पहनते हैं जिसमें के सतर की नुमाइश जिसको वो कह रही थी कि ना होए, और जो है बट दैट्स अबाउट इट। तो वो बड़ी फिर हमारे लिए हैरत की बात थी, क्योंकि जाहिर है भाई वो तो चीफ इमाम की, ग्रैंड इमाम की बेटी है थी, तो हमने फिर उसकी बातें सुनी। तो मगर वही बात है कि एक तो दुनिया में ट्रेवल करना और एक डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ मिलना, तो तब आपके अंदर ना थोड़ी एनलाइटनमेंट आती है, तो आपको पता चलता है कि दुनिया कैसे चलती है। कुएं के मेंढक बन के बैठे रहोगे अपने मुल्क में, कोने में किसी में, और अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी फिलोसफियां बनाओगे, फिर आपको नहीं पता चलेगा कि दुनिया कैसे चलती है।
लेकिन अगर मेरा मेरा जो उस्ताद है
जी,
मेरा उस्ताद अगर जाहिल है तो मैं जहालत सीखूंगा।
बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए माजिद भाई, इसीलिए अल अजहर यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा असूल क्या है, वो वैसे ही नहीं आपको बुला लेते हैं कि जी आओ हमारा तालिबे इल्म आप बन जाओ, नहीं, वो कहते हैं आप पहले वर्ल्डली एजुकेशन लेकर आए। इसीलिए अल अजहर के शेख जो हैं डॉक्टर्स हैं, फिजिसिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, वो वहां पे सारी दुनिया की तालीम लेके फिर जाते हैं अल अजहर में मजहब की तालीम लेने के लिए। उसके अलावा वो उनको, यानी आपने मैट्रिक किया और अल अजहर चले गए, वो कहते हैं जाओ जी भाई साहब जाओ, पहले जाओ मास्टर्स करो, कोई अपनी कोई इंजीनियरिंग डॉक्टरी की कोई डिग्री लो, फिर हमारे पास आना,
बी अ प्रोफेशनल,
हाँ बी अ प्रोफेशनल फर्स्ट एंड देन कम टू अल अजहर। तो इजाजत ही नहीं है वहां पे कि बस जी मैट्रिक या एफए के बाद ले लिया और फिर उसको बाद जी मौलवी बनाया। इसीलिए आप देखें कि अल अजहर के जो शेख हैं उनकी कितनी एनलाइटेंड सोच होती है, वो किस तरह से बात करते हैं, वो आपको कैसे समझाते हैं।
एजुकेशन लेने से ये नहीं है कि आपने आपको 2+2=4 आ गया।
हाँ हाँ हाँ,
एजुकेशन का मतलब होता है जब जितनी एजुकेशन आपने ली है
जी,
और वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है ये हमारी जिंदगी में काम तो नहीं आएगा,
नहीं आएगा। हाँ जी जी,
मगर उससे जो आपका दिमाग खुल
रोशन होता है ना, दिमाग रोशन होता है जो, या या
उसमें से जो आपके दिमाग में जो पॉजिटिविटी आती है,
यस, बट देन अगेन द राइट एजुकेशन फ्रॉम द राइट पीपल, किसी दकियानूसी मुल्ले से अगर आपने ली ना,
क्या
फिर तो
हाँ। मैं आपसे ये क्या कहा अभी कि अगर आपका उस्ताद जाहिल है तो आपको जहालत सिखाएगा।
बिल्कुल 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 बिल्कुल,
उस्ताद का मतलब ये नहीं होता कि बस वो सिर्फ 2+2 सिखा रहा है, वो एडिकेट सिखाता है, आपका एटीट्यूड सही करता है, वो सारी चीजें जो है वो पहले आपको सिखाता है, इसके बाद फिर आपको जिंदगी में चलना फिरना किस तरीके से आपने दूसरे लोगों को, दूसरी चीजों को, दूसरी मखलूक को, अल्लाह की सुभान अल्लाह की दूसरी मखलूक को, चाहे वो जानवर है, चाहे वो आपका घर के घर में आपका एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है,
हाँ,
ना वो किस तरीके से काटेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो जहालत से नहीं आती है,
तालीम से आएंगी। इसीलिए मजे सही देखें कि लोग जो है अपने बच्चों को आईवी लीग यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं ना अमरीका की, बड़ा लंबा पैसा देते हैं, ज्यादातर तो अमीरों के बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मिडिल क्लास में भी अपना पेट काट के ना बच्चों को भेजते हैं कि जी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जाए। उसकी क्या वजह होती है, एक तो वो आपको सिर्फ ऐसी तालीम नहीं देते जो एनलाइटनमेंट लाता है, खाने का तरीका बताते हैं कि कांटा कैसे पकड़ना है, चम्मच कैसे, सूट कैसा आपने पहनना है, कैजुअल मीटिंग में जा रहे हो तो सूट कैसा होएगा, जूता कैसा होएगा, आपका जुराब कैसा होएगा, आपकी टाई कैसा होनी चाहिए, आपके कलर्स कौन से होने चाहिए, अगर आपने कॉरपोरेट मीटिंग में जाना है तो फिर आपके तो मतलब एक द होल एटिकेट्स जो होते हैं ना वो आईवी लीग में आपको सिखाए जाते हैं। इसी तरह आप देखें कि जो किसी जमाने में, नाउ आई एम नॉट श्योर, लेकिन किसी जमाने में जो दुनिया की अलीट होती थी ना, वो अपनी बेटियों को स्विट्जरलैंड में, सॉरी पेरिस में भेजते होते थे, फिनिशिंग स्कूल था वहां पे एक, एक तो स्विस स्विट्जरलैंड में भी वैसे था, स्विस फिनिशिंग स्कूल, और एक फ्रांस के अंदर था, वहां पे भेज देते होते थे कि बेटियां उनकी बच्चियां जो हैं फाइनेस्ट जो जो तमीज है ना एटिकेट्स हैं वो सीख के आए। इस वक्त भी इवन टुडे इन इंग्लैंड यहां वहां पे एक स्कूल है जहां पे के द टॉप ब्रिटिश जो एटिकेट्स है ना वो सिखाए जाते हैं, जो के आते हैं जो ब्रिटिश ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के जो एटिकेट्स हैं वो लोग आपको सिखाते हैं। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्कूल।
आप आईवी ली की और दूसरी
फिनिशिंग स्कूल, हाँ जी,
जो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात कर रही है जी, तो वहां पर जब जैसे कि आप लॉयर बनने जा रहे हैं,
हाँ, हाँ,
तो
हाँ।
लॉयर का जो कोर्स है वो तो पढ़ाएंगे
जी, जी,
उसके
जी, जी,
साथ
जी, जी।
एक कोर्स होता है वोकैबुलरी का। आपकी जो वोकैबुलरी है वो इतनी हाई होनी चाहिए
जी
कि आपको जब आप लेटर लिखें तो लोगों को लगता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है।
इतनी फाइन लैंग्वेज लिखी हुई है,
फाइन
लैंग्वेज, यस यस,
कि वो उनको पता होता है कि यार ये पढ़ा लिखा बंदा है जिसने ये, किसी का भी आप कोई एक आर्टिकल देख ले, किसी का आप कोई लेटर आया है, कोई इन्विटेशन आया है, कोई कुछ आया है, जो उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, तो उससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा कितना पढ़ा लिखा है।
वो सिखाते हैं, और वही जैसे मैंने कहा अपने का वोकैबुलरी और खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, तो सब कुछ वो सिखाते हैं। और ब्रिटेन के अंदर हमारे किसी जमाने में हमारे पाकिस्तान के भी जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे वो अपने बच्चों को भेजा करते थे इंग्लैंड के अंदर, वही जो इनका जो स्कूल है जिसके के अंदर वो टॉप ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी जो है उसके एटिकेट्स उनको सिखाए जाते थे। इसीलिए आप देखें हमारे जो ओल्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे और उनकी फैमिली जो है ना,
उनका रहना सहना ही डिफरेंट,
रहना सहना ही उनका स्टाइल ही आपको डिफरेंट आम क्राउड से नजर आएगा, वेरी डिफरेंट स्टाइल, क्योंकि वो बहुत फाइन ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी को, वो जाहिर है कि उनका उन बच्चों का फिर हमारी अपनी सोसाइटी में जेल करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट देन व्हेन यू सिट विद देम तो आपको मजा आता है कि कितना फाइन क्राउड है वो, तो लेकिन वो चीजें अब खत्म,
क्राउड ही डिफरेंट है,
वो क्राउड ही डिफरेंट है, वो खत्म होता जा रहा है सारा माजिद भाई हमारे मुल्क से ना,
हाँ, क्योंकि
वो खत्म होता जा रहा है,
क्योंकि वो तालीम का मियार वो नहीं रहा।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
पहले अगर किसी जमाने में कोई कहता था कि मैंने अगर 12 जमाते पढ़ी तो उसका लिखाई, उसकी पढ़ाई, उसकी सोच वो दूसरी थी, और उसके बाद जब वो वहां से पढ़ के जैसे हाँ, आपने कहा कि इंग्लैंड चले गए,
हाँ, हाँ,
तो वो एकदम रिफाइन होकर आया था वापस।
हाँ, हाँ, मजदूरी मैं तो सबसे बड़ी मिसाल जो है अपने दादाजी की देती हूँ। मेरे दादाजी ने यूनाइटेड इंडिया के वक्त में 10 जमातें पढ़ी हुई थी, लेकिन आप सोचो कि 10 जमातें पढ़ के जब वो उसमें मिलिट्री के अंदर जब कमीशन लेने के लिए गए तो उनको सिपाही नहीं रखा उन्होंने, उनको कमीशन्ड ऑफिसर रखा, क्योंकि अंग्रेजी आती थी उनको, अंग्रेजी तो मतलब एक तालीम का ऐसा लेवल था। आज अब देखो जो बच्चे पाकिस्तान में मैट्रिक करें अनलेस एंड अंटिल दे आर इन अ प्राइवेट स्कूल, बेचारे अंग्रेजी का एक जुमला सीधा नहीं लिखने आते। मैं जब यहां पे कनाडा आई तो जो मेरी फर्स्ट जो जहां पे मैं काम करती थी, लड़कों को ईमेल नहीं लिखनी आती थी, एक सीधा अंग्रेजी का जुमला नहीं लिखने आता, और कहते हैं जी हम इधर कनेडियन कॉलेज के पढ़े हुए हैं। मैंने कहा यार तुम लोग किस तरह की तालीम ली हुई है कि एक सिंपल सेंटेंस नहीं लिखना आ रहा अंग्रेजी का, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट अंग्रेजी लिखनी आती नहीं है। हाँ, दिस गर्ल इज मोर प्रिटियर, ये क्या होता है मोर प्रिटियर भाई, ये कैसी अंग्रेजी पढ़ी हुई है भाई तुम लोगों ने। लेकिन वही बात है कि आपने अगर प्रॉपर जो है वो नहीं सीखा हुआ ना चीजों को, सिर्फ अंग्रेजी जबान की नहीं मैं बात कर रही, अदरवाइज भी दूसरे एटिकेट,
द होल पैकेज।
आप यकीन करें कि वहां पे हम जो नाना जी के साथ कभी जब बैठते होते थे बच्चे थे तो नाना जी हमें बताते होते थे कि आपने जब खाना खत्म करना है तो अपना चम्मच और कांटा कैसे रखना है, और आपने जो है आप अभी देखें आप किसी रेस्टोरेंट में हमारे पाकिस्तानी में जाएं, इतना चम्मच का टक 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 वो उसके ऊपर प्लेट में आ रहा होता है कि आपके सर में दर्द हो जाएगा। ये कंपेयर टू दैट आप किसी अगर फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, आवाज नहीं आएगी चम्मच की आपको, ऐसी उनको सोफिस्टिकेशन और तमीज सिखाई हुई है कि आपने ऐसे खाना है आराम से कि चम्मच की आवाज ना आए प्लेट के ऊपर। तो हल्की सी अगर कोई 100 बंदा बैठा है तो हमिंग की ऐसे करके कुछ आवाज आ रही है 100 बंदे की प्लेट का चम्मच जैसे वो खा रहे हैं वैसे, तो वही है। वो मैंने अपने बेटे को भी कहा जब मैं 2 साल पहले उसको लेके गई, मैंने कहा मैं तुम्हें जरा तमीज सिखाने के लिए फ्रेंच बेकरी जो है यहां की दुबई की उसमें लेके जाऊं, तुम देखो वहां पे लोग बैठ के बेकरी में जो फ्रांसीसी ज्यादातर आए होते हैं वो बैठ के पेस्ट्री कैसे खा रहे हैं, उस पेस्ट्री खाने का क्या तरीका है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे मैं सोचती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ लोग मेरे से भड़क जाते हैं, मैं कहती हूँ जो बच्चा इंसान का बच्चा होता है ना, उसकी माँ ने उसको तमीज सिखाई होती है. जो जानवर होता है ना बच्चा, जो बदतमीज है, बेहुदा है, उसकी माँ ने उसको, माँ का कसूर है. ऑनेस्टली आप अपने माइंड करना है, आप माइंड बेशक करना चाहते हैं, बाप का कसूर नहीं है. माँ ने अगर बच्चे को तमीज नहीं सिखाई ना, माँ का कसूर है माजिद भाई. Exactly. माँ का. आप जो दुनिया में बहुत अच्छे लोगों की तारीफ करते हैं ना, ये बंदा कितना फाइन है, कितना अच्छा है, कितना तमीजदार है, माँ ने उसको वैसा बनाया. और अगर किसी कोई वो अब्यूजर है, मारता पीटता है, बदतमीजी करता है, गंदी लैंग्वेज, उसका मतलब उसकी माँ ने उसको तमीज नहीं सिखाई. तो जो मेरी बहनें हैं वो अगर माइंड करना चाहती हैं जरूर करें, बट माँ का बहुत, आजकल की सोसाइटी में मैं समझती हूँ माँ का बहुत कसूर है. मजदूरी हम वेडिंग्स में इधर उधर जाते हैं ना, बच्चे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, चुप करके माए बैठी है.
कहा कि मुझे एक अच्छी माँ दे दो.
हाँ, नेपोलियन ने कहा था ना, नेपोलियन ने
कहा अच्छी कौम दे दूँ.
बिल्कुल, गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन.
एग्जैक्टली.
हाँ, तो वो नाच रहे हैं, चीजें लोगों की तोड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ये अपना जी बनाव संहार करके बैठी हैं. दे आर लीस्ट बॉदर्ड के बच्चे क्या कर रहे हैं. तो इट इज वेरी वेरी बैड.
बॉटम लाइन इज
माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
बॉटम लाइन इज दैट दुनिया में जितनी भी खराबियां हैं वो जहालत की वजह से.
जी जी जी.
यू नो दिस इज, एंड बाज लोग होते हैं एजुकेटेड इलिटरेट. मैं उनको कहता हूँ एजुकेटेड इलिटरेट, पढ़े लिखे जाहिल.
जाहिल
है ना. तो वो उन्होंने सिर्फ किताब की पढ़ाई कर ली है, उसको उसका मतलब नहीं पता. जैसे लोग कुरान पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़ाते पढ़ते
झूठ भी बोल रहे हैं, स्मगलिंग भी कर रहे हैं,
क्योंकि उनको पता नहीं क्या पढ़ रहे
हैं, कारोबार भी कर रहे हैं. हाँ, सब कुछ
पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं. और जब किसी मौलवी के पास जाते हैं या किसी वो ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो उनका उत्साह होता है, अगर उसका उसका एटीट्यूड और उसका रोजमर्रा की जिंदगी जहालत भरी हुई है, तो वही चीज उसको सिखाएगा.
हाँ, जैसे आप सोचें कि मैं वही जो मैं हमेशा बताती हूँ कि आज से 25 इयर्स बैक जिस वक्त मैं पेरेंट्स के साथ गई हज करने के लिए माजी भाई, तो हमारा तो पाकिस्तान से वही कॉन्सेप्ट था ना, लपेट के कुरान को और ऊपर रखना और ये करना. जब उधर हम हरम में गए तो ये जो अरब्स थे ये सारे उधर जमीन पे रख के और आराम से ना ऐसे वो जो है वो किताब को पढ़ रहे हैं, ऐसे करके रख के कर रहे हैं. तो हमें तो भाई बड़ा गुस्सा आया, हमने कहा भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, कुरान को ऐसे रख के क्या पढ़ रहे हो. तो वो अरब्स जो है वो इतना हैरान हुए, कहने लगे ये हदायत की किताब है, ये दिस इज अ बुक, इसको तुम पढ़ो और हदायत सीखो. ये क्या. मैंने कहा कि नहीं, हम तो बड़ा, मेरी माँ ने भी कहा भाई, मेरी माँ ने भी बड़ा इतराज किया. उन्होंने कहा नहीं, हम तो बड़े अदब लिहाज से इसको वो करके और ऐसे रख देते हैं. उन्होंने कहा ये लपेट के रखने की चीज नहीं है, इसको पढ़ो और इससे सीखो, सीखो इससे. तो ये नीचे रखा है कि ऊपर रखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो
इस पे जो मैसेज
आया, मैसेज है उसको समझो, उसको समझो तुम लोग, उसको समझने की जरूरत है. लेकिन हमने पाकिस्तानियों ने तो बस वही किया, खूबसूरत सा कवर बनाए हैं और उनको बस ऊपर शेल्फों पे रख दिया है
और उस पे भी सारा धूल पड़ा रहता
है. धूल पड़ा रहता है और सीखना वीखना हमने कुछ नहीं है. और अपनी अपनी तरफ के मजहब बनाए हुए हैं, अपनी तरफ का तरह का इस्लाम बनाया हुआ. आपको पता ही हमारे सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे माशाल्लाह सिख हैं. वो जब भी कभी आते हैं कोई ना कोई बीच में से कोई बंदा चीज पूछता रहता है. आपको पता राणा जी वगैरह, चरणजीत बरार वगैरह पूछते रहते हैं. इस तक एक ही है तो एक ही है. उन तो उन बेचारों को बताना पड़ता है कि दीज हैव गॉट नथिंग टू डू विद इस्लाम, दीज हैव गॉट नथिंग टू डू विद द लाइफ ऑफ प्रॉफिट. तो मजहब जो है या रसूल की जो जिंदगी है या जो बातें हमें बताई हैं, दे आर वेरी डिफरेंट. किसी के साथ ज्यादती ना करो, हराम ना कमाओ, गलत तरीके इंसानियत. हाँ, तमीज से, प्यार से.
दो बताए गए हैं कि हुकूकुल अल्लाह एंड हुकूकुल
इबाद.
राइट.
जी जी जी.
हुकूकुल अल्लाह एंड हुकूकुल इबाद. अल्लाह सुब्हान व तआला ने साफ कह दिया कि हुकूकुल अल्लाह जो मेरे हुकूक है ना,
जी जी,
नमाज, रोजा, जकात, हज वगैरह, अगर तुमने ना भी किया हो तो मैं
चाहूं,
हो सकता है मैं चाहूं तो तुमको माफ कर सकता हूं.
मैं
हुकूकुल इबाद में माफ नहीं कर सकता
जब तक कि वो आदमी तुम्हें ना माफ करे.
जिसका हक तुमने दुनिया में मारा है वो माफ करेगा
तो फिर मैं माफ करूंगा.
ये इसी सिर्फ अगर सिर्फ इसी बात पे अगर दुनिया अपने आप को देख लेना कि यार मैं रोजाना किस कितने के हुकूक, कितने के दिल दुखाता हूँ, कितने के क्या क्या करता हूँ लोगों के साथ, दुनिया वालों के साथ. ये चीज जो है ना, ये चीज अगर समझ में आ जाए लोगों के हुकूकुल अल्लाह हुकूकुल इबाद, तो उसके बाद फिर इंसान इंसान बन जाता है.
लोगों का हक मारा, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे किए, उनको सताया, कत्लो गारत की,
रोजमर्रा की चीज,
एवरी सिंगल डे ये हो रहा है हमारे माशरों में।
अमीर है वो गरीब के हक रोजाना मार रहा है।
हाँ, जमीन पे कब्जे
ताकतवर जो है वो कमजोर के हक रोजाना मारता है। आपने नौकर चाकर अपने घर में रखे हैं, उनके
मार पीट रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको तनख्वाह वक्त पे नहीं दे रहे हैं,
ये हुकूक है। तो ये अल्लाह माफ नहीं करेगा।
और कहाँ इजाजत है मजहब में इसकी? तो वो कहते हैं जी कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी आप जो है मजदूरी दे दें। तो हम
मगर
तो
आप ये देख लें, जितने भी पाकिस्तान में शुरफा एंड उमरा हैं, वो तो ऐसा नहीं कर रहे ना।
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस वही बात है कि बस वो इस्लाम 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 का ढोंग बहुत ज्यादा है, लेकिन इस्लाम का जो आई है उसका भी मतलब पता नहीं है।
नहीं
पता नहीं है उसका। हाँ जी, आपको पता है कि वो जो था एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, और उसकी जो साली थी वो बन गई थी, मुसलमान हो गई थी, उसका नाम टोनी ब्लेयर। हाँ, टोनी ब्लेयर की। तो वो जब बन गई तो वो कितनी इम्प्रेस थी माजिद भाई। वो कहती है कि जब मैं इस मजहब को पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ कि भाई ये क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ। आपको पता है रिसेंटली किसी ने विल स्मिथ का इंटरव्यू लिया, जो हॉलीवुड का स्टार है, तो उससे भी उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हमने देखा है कि लेटली तुम बहुत कुरान पढ़ने लगे हो और तुम बहुत लग रहा है कि तुम मुसलमानों से बड़ा इम्प्रेस हो। कहता है यार मैं तो हैरान हूं उनकी किताब पढ़ के। पता नहीं उसका उस्ताद अब कौन है जो कि उसको ट्रांसलेशन से पढ़ा रहा है। वो कहते हैं मैं तो इतना इम्प्रेस्ड हूं इस रिलीजन से कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो मैं इसी तरह वो मॉर्गन फेयरचाइल्ड का मैंने आपको बताया, मॉर्गन फ्रीमैन का, वो जो उधर गया था करने के लिए अपनी मुस्लिम एक कंट्री में तुर्कीये में अपनी वो शूटिंग फिल्म की, तो कहता है शुरू में तो गया तो मुझे अजान की आवाज बड़ी ही अनॉय करती थी, और मैं कहता था ये क्या सुबह 5 बजे। कहते उसके बाद मुझे उस आवाज से प्यार होने लगा, फिर मैंने उसका लोगों से मतलब पूछने लगा मैं के जी ये बताओ। हालांकि तुर्कीये में हम लोग भी गए हुए थे, वहां पे मैंने देखा है, प्लीज माइंड ना फिर से करें, वी रियली लव तुर्कीये, लेकिन वहां पे जो अजान आती है ना मस्जिदों से, वो इतनी कोई खूबसूरत आवाज नहीं है जो कि जाहिर है आप मक्का और मदीना में सुनते हैं, या शायद हम वहां से सुन के गए थे तो ज्यादा ही हम स्पॉइल्ड हुए हुए थे, तो वैसी प्यारी आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं इतनी इम्प्रेस हुआ वो आवाज उसकी सुबह 5 बजे सुन के, फिर मुझे आदत हो गई, फिर मुझे अच्छी लगने लगी, फिर मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो यू नो, और बस मैं वापस चली गई हूँ फिर से मक्का में। क्या प्यारी वहां पे अजानों की आवाजें मौजूद हैं। हम तो खिड़की अपनी खोलते थे ना अपने,
और सैकड़ों की तादाद में अजान सुबह एक वक्त में नजर आती है। हाँ,
बिल्कुल मौजूद
है। किसी कोई आधा मिनट आगे है, कोई आधा मिनट पीछे है, कोई कोई कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, मगर ये कि एक वक्त में कितनी अजानें आ रही हैं। आप कराची में भी ऐसे ही है,
ऐसे ही ऐसे
है ना। तो जब अजानें आ रही हो तो आंख खुलती है तो आदमी नास उठने वाला भी उठ जाता है। डर है
जी
जी, यार ये तो अजान हो रही है, मैं सो रहा हूँ तो उठ जाता है वो।
अच्छा वैसे आप देखें, आगे पीछे हम अपने मुल्कों में होते हैं, हम कितनी सुस्ती दिखाते हैं ना, यार कौन उठे फजर के बाद। अच्छा मजे की बात है, मक्का और मदीना में जब होते हैं ना, जैसे फजर की नमाज होती है ना, आप स्प्रिंट करते हैं बेड से, ओ फटाफट वजू करो, भागो जल्दी से, इससे पहले के जो है वो वहां पे नमाज हो जाए। बस 2 मिनट में आपने ब्रश किए, मुंह हाथ धोया, और बस आपने अपना वो पहना कंदूरा सा और अपना और निकल गया, भाग गए 1 सेकंड में। और मेरा बेटा रोज ऐसे करते थे, जैसे ही फजर की नमाज अजान आनी शुरू हुई स्प्रिंट किया बेड से, और दोनों हम खड़े हो गए, ब्रश किया, मुंह धोया, चलो जल्दी से निकलो इससे पहले ऐसा ना हो के, क्योंकि वो अजान देके थोड़ा वेट करते हैं।
हाँ, 15 मिनट।
हाँ, वेट जरूर करते हैं, हर नमाज में वो वेट करते हैं कि लोग इधर जमा हो जाएं, जमा
देते हैं 15 मिनट का, उसके बाद इकामा होता है।
बिल्कुल होता है
जी। तो वो 15 मिनट इसीलिए देते हैं, आप अगर कहीं दूर भी हैं तो आप
पहुंच जाओ
यहाँ पर
जी जी।
और उसके अंदर कहा भी जाता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो जल्दी आओ।
हाँ, 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 बिल्कुल,
सलाह के लिए जल्दी आओ एंड फलाह के लिए जल्दी आओ।
हाँ, हाँ,
तो ये तो
ओ यस। और अच्छा मुझे भाई पता नहीं क्या आता है, शायद हम प्रेजिडिस हैं या हम क्या हैं, जो नमाज पढ़ने का वहां पे मजा है ना,
सकते हैं
वो वैसे कहीं और है भी नहीं,
ऑफकोर्स
है ना. देखा आपने ये बात नोट की?
100% इसीलिए तो वहां पर नमाज पढ़ने का 70 टाइम ज्यादा सवाब है.
अच्छा मदीना में तो ये होता था कि सुबह के वक्त क्योंकि वो खोलते नहीं थे ना सारा अंदर की मस्जिद, जो है मस्जिद नबी खोलते नहीं थे औरतों के लिए एटलीस्ट जो.
अच्छा
तो वो खोलते तो वो कहते थे कि आपने इधर सेन के अंदर पढ़ना. अच्छा सेन के अंदर बैठ के वो पतली सी जो है आपकी वो जो आपने बिछाई हुई अपनी जानमाज उस पर बैठ के आप और आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, खुशी इतनी है कि आप उधर फर्श पर ही बैठ के
भूल जाएगा.
हाँ उधर फर्श पर ही आप बैठ के जो है वो पतली सी जानमाज पे नमाज पढ़ रहे हो, आपको तकलीफ भी नहीं हो रही. और यहाँ पे तो हम वो जी नीचे बैठा नहीं जा रहा, मैं तो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ूंगा या सोफे पे बैठ के नमाज पढ़ूंगा. हाँ। नीचे बैठा नहीं जा रहा. हाँ। ये नहीं हो रहा
वहाँ पर आप वो तकलीफों को कहते हैं ना तकलीफों. हाँ। भूल जाता है इंसान.
हाँ, हाँ।
भूल जाता है तकलीफों को और बस वो शुरू. हाँ।
है अब मेरा दिल चाह रहा है मैं फिर
दोबारा चली जाऊँगा.
इंशाल्लाह. अब मुझे अफसोस हो रहा है मैंने आप सारे लोगों के लिए दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला आपको यहाँ पे लेके आए, अपने लिए तो दुआ ही नहीं की मैंने कि अल्लाह ताला मुझे फिर से लेकर आओ यहाँ पे.
वो कहते हैं ना कि दुआओं में जब आप दूसरे के लिए दुआ करती हैं तो फिर वो उसको भी मिलता है आपको भी मिलता है.
अच्छा अच्छा बस अल्लाह करे अल्लाह करे. मैंने तो बहुत सारे लोगों के लिए फिर बहुत दुआएं की कि अल्लाह ताला सबको यहाँ पे लेकर आए. तो अब मुझे ख्याल आ रहा है कि यार मैंने अपने लिए तो की नहीं है कि अल्लाह ताला हमें भी लेकर आओ. अपने लिए तो भूल ही गया लोगों की दुआ में.
चलिए सही है जी. मेरा ख्याल टॉपिक यावर को तो बहुत देर हो गई है.
हाँ।
है ना. मगर इतना अच्छा टॉपिक था कि दिल नहीं चाह रहा था इसको खत्म करने का. चलिए कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे. 4166201778 हमारा फोन नंबर है. डोंट यू गो अवे, विल बी राइट बैक.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر
6478724900.
अपनी कम्युनिटी का सब तो बड़ा बढ़िया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है.
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जाता. सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज.
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171.
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए. आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं. राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਲ ਸਟੇਟ ਐਜੈਕਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਕੋਲ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ $1,775 ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ 6472903773 ਯਾਨੀ 6472903773.
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन. आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे. ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ऑन्टेरियो. नो अपॉइंटमेंट नीडेड. ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप. अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी. क्विक ट्रक लियो 5196220660 quicktruckcube.com.
हमारा मंसूबा ऑन्टेरियो को कनेक्ट कर रहा है. हम रोजाना के सफर को कम करने के लिए नई सड़कों और हाईवेज की तामीर कर रहे हैं और बढ़ते हुए इलाकों को मुंसलिक करने के लिए अवामी ट्रांजिट को वसत दे रहे हैं ताकि आपका सफर तेज, महफूज और आसान हो. मजीद मालूमात ontario.ca/builds पर मौजूद हैं. इसकी अदायगी ऑन्टेरियो की हुकूमत की जानिब से की गई है.
हेवनली डिजर्ट्स, अपस्केल डिजर्ट्स कैफे, जहां आप इंजॉय कर सकते हैं इनोवेटिव डिजर्ट्स जैसे कि क्रॉफल, मिल्क केक, चीज केक, क्रेप्स, सैंडी जार्स, ब्रिटिश क्लासिक्स, हैंड क्राफ्टेड ड्रिंक्स, मोजीतोस, मिल्क शेक एंड स्मूदीज। मजेदार डिजर्ट्स की बहुत सारी वैरायटी और वो भी पूरी फैमिली के लिए। Heavenly Desserts, 5840 Mavis Road, Unit Number 2 in Mississauga. Call 905-203-0086,
905-203-0086.
Chandni Banquet Hall.
Intelligent choice, locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
सारे पैकेज का नाम चांदनी बैंक्वेट हॉल। आज ही कॉल कीजिए 437-218-8734 chandnihalls.ca।
जी सामने नाजरीन, वेलकम बैक अगेन। एंड 7:39:50 हमारी घड़ी में हो चुकी है। 8:30 तक हमने और आपने साथ साथ रहना है। और अगर आप मुझसे ब्लूजेस की अपडेट मांगेंगे तो भाई ब्लूजेस की अपडेट नहीं दे सकता, क्योंकि टोरंटो एंड शिकागो व्हाइट सॉक्स ने आज गेम खेलना था शिकागो में, और शिकागो में बारिश हो रही है अब, तो इसलिए रेन डिले है इस वक्त। एंड जैसे ही गेम शुरू होता है तो हम आपको अपडेट्स जरूर देंगे उसके। कल जो है टोरंटो ने शिकागो को बीट किया था, तो आज फिर हो सकता है टू इन अ रो, यू नेवर नो टू इन अ रो हो सकता है, ऐसा हो जाए। एंड आमिर मेरे साथ हैं। आमिर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु, कैसे हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? तमाम सामाइन को भी अस्सलाम वालेकुम, और नाजरीन को भी।
नाजरीन को पहले सलाम करते, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं।
नाजरीन तो बस अब आपको पता है मैं आ गया हूँ, सबको पता चल जाता है। अपने अपने टीवी
एक महक आ जाती है,
महक है, खूबसूरती रोशनी है भाई।
अच्छा
रोशनी है,
अच्छी बात। तो चले साहब एक गीत हो जाए, पहले
गीत सुनाए माजिद भाई।
बहुत देर होगी कोई गीत नॉर्मल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आप एक पहले गीत कहते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत है, पहले ये गीत सुने, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे,
सब कुछ मेरा चाहे अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing check.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस तो बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो। 905-607-5000, 905-607-5000। विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वेराइटी है। बेहतरीन फीस्ट इंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसेस सागर, दे आर इन ओकवेल एज वेल। विलेज टेस्ट, 9052323663। विलेज टेस्ट।
आशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स। मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान ताज़ो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा। 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
जी साहब, वेलकम बैक अगेन। एंड अल ईमान की बात करते चलो। अल ईमान ग्रोसर्स सब ईद की सेल लगाई हुई है। आपको पता है कि ईद उल अजहा की आमद है, तो सब अल ईमान वालों ने ईद की सेल लगाई हुई है। और वो सारी चीजें जितने भी मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है, अगर मैं लिस्ट पढ़ना शुरू कर दूं साहब, ये शाम इधर ही हो जाएगी, 8:30 बज जाएंगे। ये शेपर्ड एवेन्यू 2560 शेपर्ड एवेन्यू। अच्छा, ये मिसागा वाला शेपर्ड एवेन्यू है, मींस के आप स्कार्बरो में जो शेपर्ड एवेन्यू है, टोरंटो में जो शेपर्ड एवेन्यू, उसकी बात नहीं कर रहे हम। ये हाईवे 10 एंड डंडास के कॉर्नर पर आपको मिलेगा अल ईमान। अल ईमान पे जाइए, वहां पर बे इंतहा किस्म की सेल लगी हुई है। और आपने अगर कुर्बानी करनी हो तो कुर्बानी के लिए भी ऑर्डर्स ले रहे हैं वो। अली को कॉल कर सकते हैं आप 6479989893। अल ईमान के अली को कॉल कर लें आपने अगर कुर्बानी करनी हो। और इसके साथ साथ सब जब कुर्बानी के लिए ऑर्डर देने जाएंगे या ऑर्डर पिक करने जाएंगे, तो वहां पर बे इंतहा ग्रोसरीज है, उन ग्रोसरी का आप फायदा उठा लें। जब कुर्बानी की बात कर रहा हूं मैं, तो सब मुस्लिम वेलफेयर कनाडा बरसों से दुनिया में कई जगहों पे ये आपके बिहाफ पे कुर्बानी करते हैं, और उसका जो गोश्त है वो नीडी लोगों को देते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आपने कुर्बानी करवानी हो तो गाय का एक हिस्सा आपको पड़ेगा $105 का। $105 का आपको गाय का हिस्सा मिलेगा। या अगर आपने पूरी की पूरी गोट करनी है, गोट तो पूरी की पूरी होगी, अगर गोट आपने कुर्बानी करनी हो तो $200 गोट की प्राइस है। और अगर आप GTHA में अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो कुर्बानी का तीसरा हिस्सा, जो गोश्त का तीसरा हिस्सा होता है, वो तीसरा हिस्सा आपने ऑफ कोर्स उस पर आपका कोई हक नहीं है, आप वो जो है अपने नीडी लोगों को देना पड़ता है वो। तो नीडी लोगों के लिए कुर्बानी का तीसरा हिस्सा आप मुस्लिम वेलफेयर कनाडा को दे सकते हैं, और वो अगेन आपके बिहाफ पे वो नीडी लोगों को देंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप mwcanada.org पर जाइए, मुस्लिम वेलफेयर कनाडा। mwcanada.org पर जाइए, वहां पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट डॉक्टर फयाज कुरैशी ऑल काइंड्स ऑफ डेंटल सर्विसेज इनके पास हैं। फैमिली डेंटिस्ट्री है, ओरल सर्जरी है, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है, सेडेशन डेंटिस्ट्री है, आपकी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं ये, और इसके साथ साथ को अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो नो इंश्योरेंस नो प्रॉब्लम कहना है डॉक्टर साहब का। तीन लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, एक स्कार्बरो में बर्स माउंट एंड लॉरेंस के कॉर्नर पर जो बिल्डिंग है उसमें आपका एक क्लिनिक है, और दो मिसिस सागा में है, तो तीनों क्लिनिक जहां भी जो भी आपको करीब पड़ता है डॉक्टर फयाज कुरैशी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। और डॉक्टर फयाज कुरैशी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड अ वेरी गुड डेंटिस्ट, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लें डॉक्टर फयाज कुरैशी से 9052325678 डॉक्टर फयाज कुरैशी का फोन नंबर है। जी आमिर साहब।
जी माजी भाई, बिल्कुल आपने बताया फयाज कुरैशी। अच्छा माजी भाई, आपके पास
जी
या हमारे सामाईन भी हमें सुन रहे हैं और नाजरीन भी सुन रहे हैं,
हाँ,
एक टाइम मशीन दी जाए।
टाइम मशीन,
हाँ
अच्छी बात।
और आपको एक सिलेक्शन दी जाए, शाजी जी को भी अभी आ जाती हैं, वो थोड़ा पंचर लगवाने गई हैं।
अच्छा
तो उस टाइम मशीन को आप अपने आज से लेके आगे नहीं जाना, पीछे जाना है कि आप किस एरा पे जो है उस यानी अपनी लाइफ के उस पोजीशन पे ले जाना,
अपनी लाइफ के एकदम पीछे जाना है
अपनी लाइफ के।
अच्छा,
अपने इंडिविजुअल जो लोग यहां में सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि आप किस टाइम जोन में जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं।
वाओ,
तो था ना कि भाई मुझे जो है बचपन में पहुंचा दो, लेकिन उसका फिर वैलिड रीजन होना चाहिए। आपको पहुंचा तो दिया जाएगा, अभी मैं घुमाऊंगा हम वो टाइम मशीन को ऑन करेंगे, आप अपने बचपन में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रीजन भी बताना है कि आपने क्यों जाना है। क्योंकि यार मैंने शादी के बाद वाला जमाना अच्छा था, कॉलेज लाइफ अच्छी थी, वॉट एवर जो आपकी जिंदगी में आप चाहते हैं कि आज आप जिस भी एज में हैं और आपको टाइम मशीन का ऑप्शन मिले तो वो आप कौन सा टाइम जो है वो दोबारा से आप जो कहते हैं यार मैं एक बार फिर वो लम्हा या वो टाइम जो है वो जी लूं।
वो जो मुझसे अगर सवाल करें, हाँ, ना
आप भी शामिल हैं इसमें,
तो वो जो स्कूल से कॉलेज का जो ट्रांसफर था ना, ट्रांसफर टाइम मीन्स मैट्रिक से इंटर का टाइम, वो टाइम, क्योंकि अब अगर वजह पूछेंगे तो मैं वजह, हालांकि अभी आपने मुझसे सवाल किया ये, मगर वजह पूछेंगे तो वजह वो थी कि है कि स्कूल तक तो आप बंधे हुए थे,
पाबंदियां बहुत थी,
आप क्लास को नहीं छोड़ सकते, क्लास में जो है आपको रोजाना जाना पड़ता था, अगर आपने एक भी क्लास किसी वजह से मिस भी कर दी, हालांकि मिस तो कर सकते नहीं है आप, तो फिर आपको एक लेटर लाना पड़ता था कि कहां गए थे, क्यों गए थे, और इसके बाद फिर अगर आपने दो तीन मिस कर दी तो फिर आप अपने जो पेरेंट्स को लेके आए यहां पर, तो वो भी एक बड़ा हेडेक था। तो मतलब है कि आप बंधे हुए थे,
तो एक आजादी चाहिए वो हो जाती है आप कह रहे हैं।
अब कॉलेज में जो है
वो पूछने वाला नहीं हुआ,
कोई पूछने वाला ही नहीं है, आप एक महीने बाद भी चले जाएं तो वो प्रोफेसर भी आपका देख के कहेगा आप बेटा आप यहीं पढ़ते हो नए स्टूडेंट आए हो, है ना।
मैं आपने जो बात की है ना, मुझे आप अपने कॉलेज में पहुंचा दिया आपने माजिद भाई,
है ना, नए स्टूडेंट आए हो तो, क्योंकि वहां पर हर कोई जानता है हमें कैंटीन के अंदर,
बस
ठीक है ना, कैंटीन में तो
वही आईडी कार्ड थी सारी, कैंटीन आईडी कार्ड थी,
कैंटीन आईडी कार्ड थी, आप किसी से पूछना है आपको कि ये
काम
ये नेशनल कॉलेज का लड़का है, हाँ हाँ ही था, हमने रोजाना कैंटीन में देखा है, या आप स्पोर्ट्स में आ गए, है ना, तो स्पोर्ट्स में जो है फिर पूरे कॉलेज जानती है आपको, चाहे वो एथलेटिक हो, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, चाहे हॉकी की टीम हो, तो आप क्योंकि कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कॉलेज को, तो आप तो स्टार है फिर, तो स्टार को तो हर एक कोई जानता है। अगर आप अपने कॉलेज का फ्लैग लेके वो इंटर यूनिवर्सिटीज या इंटर कॉलेजेस जो गेम्स होते थे, तो उसके अंदर अब तो पता नहीं होते भी हैं, नहीं होते
हैं, होते
अभी
होते, इंटर स्कूल इंटर कॉलेज,
अच्छा इंटर स्कूल इंटर कॉलेजेस के जो वो थे उसमें आप को अगर ऑनर मिला कि भाई आप
स्कूल की टीम से खेल रहे हैं
और अपना झंडा लेके ना
स्कूल का
जो परेड होती थी ना पहले गेम शुरू होने से पहले परेड होती थी, तो परेड में जो है वो आप अपना झंडा उठा के चल रहे हैं और पूरे पूरे आपके एथलीट्स पीछे आपके आ रहे हैं, जैसे ओलंपिक्स
होता है,
जस्ट लाइक ओलंपिक्स, दैट वाज अ सो एवरीबॉडी नोज यू,
यस, है ना, और आप आगे चल रहे हैं,
आगे चल रहे हैं, तो पूरी पूरी जो स्कूल है, कॉलेज है, पूरा जो कॉलेज है, कॉलेज के नॉट ओनली स्टूडेंट्स बल्कि आपके जो साथजा हैं वो सब आपको जानते थे.
यस,
तो वो क्या बड़ी बात है कि आप वो, या ये कि आप कुछ ऐसा काम दिखा
दें. यस, काम किया होगा, आपकी हाजिरी हो रही हो प्रिंसिपल साहब के रूम में तो फिर पूरा कॉलेज और स्कूल आपको जानता
होगा, पूरा स्कूल जानता होगा, फिर आपको
हाजिरी, हर हफ्ते हाजिरी होती है,
हर हफ्ते हाजिरी होती है भाई, आगे भी बाहर खड़े अब अंदर आने का किस वक्त क्या होगा, अब क्या इल्जाम लगेगा हम पे,
नहीं आपको अब क्या किया, पेरेंट्स भी तैयार होते जानी तो, अरे यार अब किसके साथ, अब क्या किया इसने.
हाँ,
यस,
है ना, तो ये
तो आपका जो है वो ट्रांजेक्शन वाला टाइम आप कहते हैं, वो
ट्रांजेक्शन जो टाइम था ना वो स्कूल से लेके कॉलेज तक,
जबरदस्त,
तो वो जो टाइम था वो टाइम वापस नहीं आ सकता.
हाँ, आपको ऑप्शन दिया है ना हमने, आप रिमाइंड कर सकते हैं, आप कह रहे वहां तक ले आके छोड़ दो मुझे.
हाँ,
जब मेरा मैट्रिक का बोर्ड का एग्जाम हो गए या आपने कैम्ब्रिज से दिया है या मैट्रिक बोर्ड से दिए, ओ लेवल ए लेवल दिया या मैट्रिक बोर्ड दिया है, तो वो आप कहते हैं बस जैसे रिजल्ट आया है और नेशनल स्कूल, पीसीएचएस कॉलेज और दिस ने फॉरमेन कॉलेज नाजमाबाद,
हाँ,
यहाँ एडमिशन शुरू होने लग गए, फॉर्म भरना शुरू हो गए, भाई अब तो मिलेगी आजादी.
या ये एक और चीज, क्या आप इलेक्शन जीत गए या इलेक्शन में खड़े हो गए?
खड़े हो गए इलेक्शन में, खड़े हो गए,
फॉरगेट अबाउट इलेक्शन में,
तो खड़े ही हो गए बहुत,
है ना, आप इलेक्शन में खड़े हो गए, चाहे वो जेएस हो, चाहे जीएस हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं स्कूल कॉलेज का, तो फिर आपको सब कुछ जानता है,
जबरदस्त,
आपके जो फेवर कर रहे हैं वो भी जानते हैं, जो आपके अगेंस्ट हैं वो भी जानते हैं आपको, और स्पेशली जब आपने जाके तकरीरें करनी है सब पूरे कॉलेज के सामने, तो फिर तो आपको सब लोग जानते हैं कौन है,
जानने के साथ फिर सुनते भी हैं,
सुनते भी हैं कि आपने क्या करना है. उस जमाने में तो कोई वो नहीं था कि भाई हमने वो, हाँ जी हाँ, हम यहाँ नलके लगवा देंगे, है ना,
सड़क बनवा दूंगा,
सड़क बनवा दूंगा, नलके लगवा दूंगा,
बिजली आ जाएगी खंभों में,
और इसके अलावा फिर ये जो जितने हमारी क्रिकेट की पिच है उसको सही करवा देंगे, है ना, और इसके साथ साथ हॉकिया जो है हम आपको फ्री दे देंगे.
नहीं ऐसे बात, वो टाइम ये नहीं था मुझे लगता ये वाला टाइम नहीं था
हमारा.
हाँ,
वो टाइम था भाई,
उस
वक्त भी बहुत सारी वो
हॉकिया बांट देंगे,
हॉकिया फ्री बांट देंगे और
पिच लगवा देंगे
पिच, हाँ यूनिवर्सिटी में पिच लगवा देंगे और सब कुछ करा देंगे, मगर ये कि वो आजादी का नाजायज फायदा जिसने नहीं उठाया ना
वो बेकार है, हाँ, लाइफ में कुछ किया ही नहीं.
हाँ, तो आजादी तो फिर मिली है, तो आजादी के ऊपर बात करें ना कि हाँ, आजादी क्यों हमें पसंद थी. वाह जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह.
कैसे भाई साहब?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, कब से कोशिश कर रहा था मैं, चलो आपकी जो प्यारी आवाज होती है वो सुनने को मिले और फिर साथ में वो हमारे बाजी भी होती है, लेकिन वो तो चली गई ना.
हाँ, पंचर लगवाने गई है.
वो क्रिकेट न्यूज दे रहे थे ना, तो मैंने थोड़ा सा उसमें आगे फोन किया था मैंने, क्या वो तो मैच तो मतलब थोड़ी सी न्यूज में अपडेट करनी थी, तो वो वैसे भी मैच को तो एबंडन कर दिया गया वापस.
हाँ, पाकिस्तान इंग्लैंड, बारिश बहुत हो रही है वहाँ.
देखो मैंने एक लिखा है, मैं लिखते रहता हूँ वैसे भी सोशल मीडिया पे, कि ये इसका एक ही है जहाँ हमारा स्काईडोम देखा है आपने, राइट, जो क्लोज होता है बारिश के स्टेडियम. अगर ऐसा स्टेडियम इंग्लैंड में बन जाए तो आईसीसी को सोचना चाहिए इसमें ज्यादा कदम रख आगे, मतलब में डेवलपमेंट के तौर पर, तो ये मसला ही खड़ा ना हो, बारिश हुई फट करके बंद कर दो.
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि कवर्ड स्टेडियम जो है,
डोम स्टेडियम
डोम स्टेडियम. हाँ, मतलब जैसे हमारे स्टेडियम कितना, देखो बेसबॉल की मजा आती है, मैं उस दिन देखने गया, बहुत मजा आई मुझे देखने. हाँ, हालांकि हार गई थी ब्लू जेस, कोई मसला नहीं, मजा आ गया.
हाँ, डोम स्टेडियम बना सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट ये बेसबॉल जो है वो भी, उसकी बॉल भी इतनी ऊंची जाती है जितनी क्रिकेट की जाती है.
बिल्कुल बिल्कुल,
है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है, मगर अगेन मिलियंस ऑफ डॉलर की हम बात कर रहे हैं ना.
किसी जगह पर क्या कमी है, सबसे पहले तो उसको डालना चाहिए हाथ.
किसको?
बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल जो 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 बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा किंग क्रिकेट का, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का किंग, जिसके पास शेयर्स होते हैं, जिसके पास एडवर्टाइजमेंट होती है, मीडिया राइट्स होते हैं, एवरीथिंग इज अ किंग।
बस आपकी एप्लीकेशन
एग्री करेंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। ले हम तो बल, हम तो चाहते वही है कि हम
बिल्कुल क्रिकेट लवर्स के लिए कितना सैड होता है कि जब कोई मैच हुए बारिश की, जैसे आज माजिद भाई जो है वो सैड है।
हाँ, आज बारिश हो रही
है। वो ब्लू जेज में माजिद भाई ने अभी खबर सुनाई कि वहाँ बारिश हो रही, जबकि कल जीत गए थे।
हाँ, शिकागो में, टोरंटो ने शिकागो से खेलना था, मगर आज